كاتب نمبر 4 عنوان بلیک کالر. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے جسے آپ کے لیے عائشہ ریکارڈ کر رہی ہیں، جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف پیش کر رہے ہیں، مظہر کریم ایم اے نے تحریر کیا. او ہاں، یہ دونوں سائنسدان اسپیشل لیبورٹری میں کام کر رہے ہیں. میں نے اسی مشین سے ان کے ذہنوں کو کام کرنے پر آمادہ کیا تھا، پروفیسر راکی نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا. اچھا ویسا کرو کہ مجھے اس اسپیشل گیٹ تک لے چلو، لیکن خفیہ طریقے سے، عمران نے کہا. اور پروفیسر اسباب میں سر ہلاتا ہوا مڑ گیا. عمران نے بستر پر بے ہوش پڑی ہوئی میڈم کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور پروفیسر کے پیچھے چل پڑا. ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا. ڈاسن نے ایک فائل کا مطالعہ کرتے کرتے چوک کر سر اٹھایا کیونکہ اس کی گیٹ کے کونے پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے ڈبے میں سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز اچانک نکلنے لگی تھی. وہ ایک لمحے تک تو بے خیالی کے سے انداز میں اس ڈبے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے چوک کر ڈبے کے وسط میں لگے ہوئے بٹن کو دبا دیا. بٹن دبتے ہی سامنے دیوار پر بڑی سی اسکرین روشن ہو گئی. اسکرین پر دھماکے سے ہونے لگے اور پھر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا. روشن یہ مرزم دیکھتے ہی کرسی پر اس بری طرح اچھل کر نیچے ایرتے گرتے بچا. اس کی آنکھوں سے شدید حیرت ٹپک رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو. اس ڈبے کا تعلق میڈم کی خفیہ خوابگاہ سے تھا اور میڈم کے بیڈ کی سائے کی پٹی کے اندر اس کا کنیکشن تھا جو بظاہر نظر نہ آتا تھا. لیکن اگر اس جگہ کو خصوصی طور پر دبایا جائے تو اس کمرے میں لگے ہوئے ٹی وی کنیکٹر کا سلسلہ ڈاسن کے خاص کمرے کی مشین سے ہو جاتا تھا. یہ میڈم اور ڈاسن کے درمیان خفیہ رابطے کا ایک سلسلہ تھا. جب میڈم اور ڈاسن کو اپنی خفیہ خوابگاہوں میں عیاشی کے لیے طلب کرنا چاہتی تو وہ بیٹھ کی اس پٹی کو دبا دیتی اور اس طرح ڈاسن کو علم ہو جاتا. ڈاسن اس مشین کو آن کر دیتا اور پھر اسکرین پر اس کمرے کا نہ صرف منظر دیکھ لیتا بلکہ یہ منظر ایسا ہوتا کہ ڈاسن کے جذبات بھڑک اٹھتے اور وہ بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف میڈم کی خوابگاہ کی طرف دوڑ پڑتا جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے. اب بھی ڈبے کی سیٹی سن کر وہ اس لیے چوکا تھا کہ میڈم نے اسے تلخ کیا ہے، لیکن اسکرین پر ابھرنے والے منظر نے اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے. اسکرین پر میڈم کے جذبات بھڑکا دینے والے پوسٹ کے بجائے ایک حیرت انگیز منظر نظر آ رہا تھا کہ کوئی شخص میڈم کو بستر پر سے اٹھا کر کندھے پر لاد رہا تھا. میڈم کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھی. اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص سائڈ دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا. جیسے ہی میڈم کو اٹھانے والا آدمی مڑا، ڈاسن ایک بار پھر کرسی سے گرتے برتے بچا کیونکہ میڈم کو اس طرح کاندھے پر اٹھانے والا علی عمران تھا. وہ علی عمران جسے اس کے ساتھیوں سمیت ڈاسن نے دیسو کی وجود میں پھینکوا دیا تھا. دروازے کے قریب جا کر آگے جانے والا شخص مڑا تو ڈاسن نے اسے بھی پہچان لیا. وہ پروفیسر راکی تھا، ذہنوں کو تبدیل کرنے کا سیکشن کا انچارج. اور وہ پھر دونوں ہی دروازے سے باہر نکل گئے. اسکرین پر صرف خالی کمرے کا منظر ہی نظر آنے لگا. اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ کس طرح ہو گیا؟ علی عمران اندر کیسے آیا؟ پروفیسر راکی اس کے ساتھ کیسے مل گیا؟ اور میڈم کی یہ حالت؟ ڈاسن نے ووٹ کاٹتے ہوئے سوچا. اسے ساتھی ہوئے ایک جھٹکے سے نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ تقریباً بھاگتا ہوا کمرے کے ایک کونے میں موجود اسٹینڈ پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کے پاس پہنچا. مشین پر کسی کپڑے کا غلاف سا چڑھا ہوا تھا. اس نے جلدی سے غلاف کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور مشین کا بٹن آن کر دیا. مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑنے لگی اور پھر اس کے اوپر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی. ڈاسن نے جلدی سے اس مشین کی مختلف نابیں گھمائی اور اسکرین پر منظر بدلنے لگے. وہ ہر منظر کو غور سے دیکھتا اور پھر نوب گھما دیتا. چند لمحوں بعد ایک منظر ابھرا تو اس میں پروفیسر راکی اور علی عمران نظر آنے لگے. وہ ایک طویل سرنگ کے دھانے پر کھڑی ایک شٹل گاڑی میں سوار ہو رہے تھے. او تو یہ اسپیشل وے سے نکل رہے ہیں، اب سمجھ گیا کہ یہ ایسے اندر آئے ہیں اور یہ لازمن اسپیشل وے سے آئے ہیں. لیکن اس اسپیشل وے کو کھولنے کا کوڈ تو صرف میڈم کو ہی پتا ہے. پھر یہ لوگ کس طرح اندر آئے اور باہر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے سے مشین آف کی اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگ پڑا. کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں آیا اور پھر اس راہداری میں دوڑتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا. راہداری کے اختتام پر موجود ایک بڑے سے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا. یہ ایک کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی مشینیں نصب تھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس آپریٹر ان مشینوں پر کام کر رہے تھے. یہ ڈاسن کا کنٹرولنگ روم تھا اور ان مشینوں کے ذریعے وہ لیبورٹری کے تمام حصوں کو کنٹرول کرتا تھا. ہر مشین علیحدہ علیحدہ حصے کو کنٹرول کرتی تھی. ڈاسن تیز تیز قدم اٹھاتا شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی مشین کی طرف بڑھا. یہ مشین بند پڑی تھی اور سامنے کوئی آپریٹر نہ تھا. اس مشین کا تعلق لیبورٹری کے اس حصے سے تھا جس میں وہ اسپیشل وے موجود تھا. لیکن چونکہ اسپیشل وے کا کنٹرول میڈم کے پاس تھا، اس مشین کو چلانے کی ضرورت کبھی پیش نہ آئی. لیکن ایمرجنسی میں اس مشین کو چلا کر اس حصے کا کنٹرول سنبھالا جا سکتا تھا. باقی مشینوں کے سامنے کام کرنے والے آپریٹر روبوٹ تھے جنہیں انسانی شکلوں میں تیار کیا گیا تھا اور وہ بظاہر انسان ہی نظر آ رہے تھے. اس لیے ڈارسن کے اندر آنے کے باوجود کوئی بھی نہ چونکا اور کسی نے اس کی طرف مڑ کر کچھ پوچھا. وہ سب اپنے اپنے کاموں میں اچھی طرح مصروف رہے. ڈارسن نے جلدی سے مشین کو آن کیا اور ان کے سامنے رکھے ہوئے ٹول پر بیٹھ گیا. اس نے مشین کی سائڈ سے لٹکا ہوا ہیڈ فون اتار کر اپنے سر پر چڑھا لیا اور پھر مشین کے درمیان میں لگی ہوئی اسکرین کو دیکھنے لگا جس پر دھماکے سے ہو رہے تھے. ڈارسن کا ہاتھ تیزی سے ایک نوب کو گھما رہا تھا. چند لمحے بعد ہی اسکرین پر ایک منظر ابھرا اور ڈارسن نے ہاتھ ہٹا لیا. دوسرے لمحے اس کے ہوٹ بھیج گئے کیونکہ اسکرین پر اسپیشل وے کا منظر نظر آ رہا تھا. اسپیشل وے کھلا ہوا تھا, ساتھ ہی شٹل گاڑی کھڑی تھی اور علیم جان, پروفیسر روکی اور میڈم تینوں غائب تھے. ڈارسن چند لمحے کچھ سوچتا رہا, پھر اس نے سر سے ہیڈ فون ہٹایا اور تیزی سے اٹھ کر وہ سائڈ میں رکھی ہوئی مشین کی طرف بڑھا. اس مشین کی سائڈ سے منسلک کے ایک لچھے دار تار کو کھینچ کر اس کا پن پہلے والی مشین کے ساتھ منسلک کر دیا اور دوبارہ اسٹول پر بیٹھ کر ہیڈ فون سر پر دوبارہ چڑھایا اور مشین کے مختلف بٹن دبانے لگا. ساتھ والی مشین میں بھی زندگی کی لہر دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر منظر بدل گیا. اس بار اسکرین پر دیسی قبیلوں کے جھونپڑے کا منظر نظر آنے لگا اور ڈارسن یہ دیکھ کر چوک پڑا کہ جھونپڑوں میں سے 18-20 افراد نکل کر اس جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے جس پہ اسپیشل گیٹ تھا. عمران آگے تھا لیکن میڈم کے ساتھ نہ تھی, البتہ ایک سفید فام عورت ان کے ساتھ تھی. وہ سب تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے. ڈارسن خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا. اس کے ہوٹ بچھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ اسپیشل وے میں داخل ہو گئے. ڈارسن ہوٹ بچھے انہیں اسپیشل وے میں داخل ہوتا دیکھتا رہا. ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ ان سب کو فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے, لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خیال بدل دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف باس جو کہ میڈم پر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرے گا کہ میڈم نے غداری کی ہے. اس لیے انہیں فوری طور پر ہلاک کرنے کے بجائے اگر بے ہوش کر دیا جائے اور پھر چیف باس سے رابطہ کر کے فیصلہ کی جائے تو صورتحال چیف باس پر واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد لال فن وہ میڈم کے بجائے پوری لیبورٹری کا مکمل انچارج بن جائے گا. سناچر نے سرخ بٹن پر ہاتھ رکھا ہوا ہاتھ ہٹایا اور اس سے نیچے ایک نیلے رنگ کا بٹن کو دبا کر ساتھ ہی ایک نوب گھما دی. اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور عمران اس کے ساتھی جو اسپیشل وے میں داخل ہو کر اب اس کا دروازہ بند کر رہے تھے, اچانک چھت سے نیچے نیلے رنگ کی چنگاریاں کی شدید بارش ہو گئی اور جس کے جسم سے یہ چنگاریاں ٹکرائی وہ اس طرح اچھل کر فرش پر گرے کہ دوبارہ حرکت ہی نہ کر سکے. جب ڈارسن کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ اندر آنے والا ہر شخص ان جنگاریوں کی زد میں آ کر بے حس و حرکت ہو چکا ہے تو اس نے نیلے رنگ کا بٹن آف کر دیا اور اس نے مشین کے نیچے بنے ہوئے کھانے کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا مائک نکال کر اس کا بٹن دوبارہ منہ سے لگایا. ہیلو ہیلو, ڈارسن کالنگ چیف 63, ڈارسن نے تہمکانے لہجے میں کہا. یس سر, نمبر 133 اٹینڈنگ. چند لمحوں بعد دوسرے صرف سے ایک کھڑکڑائی کی آواز سنائی دی. نمبر 1, اسپیشل وے کے آخری پوائنٹ پر کچھ بیرونی افراد 02 کے فائر سیونگ ہیتو ہسکت پڑے ہیں. تم اپنے سارے سیکشن سمیت وہاں جاؤ اور انہیں وہاں سے اٹھا کر 33 کے 0 روم میں ڈال دو اور ان کی کڑی نگرانی کی جائے. ڈارسن نے کہا. یس باس, حکم کی تعمیل ہوگی, دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈارسن نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا جس کی نظریں دوبارہ اسکرین پر جم گئی. تھوڑی دیر بعد سیاہ رنگ کی وردیوں میں ملبوس تقریباً 50 کے قریب افراد وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک ایک کر کے عمران اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر کندھوں پر لادا اور واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مشین سے ٹوٹ ٹوٹ کی آوازیں نکلنے لگی. یس چیف ڈارسن, ڈارسن نے دوبارہ مائک کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا. نمبر 133 اسپیکنگ, حکم کی تعمیل ہو گئی ہے, سب کو 0 روم میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی کڑی نگرانی کروائی جا رہی ہے. دوسری طرف سے وہی کھڑکڑاتی ہوئی آواز سنائی دی. اوکے, جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں ان کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے, ڈارسن نے کہا اور مائک کا بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا. اس کے بعد اس نے مشین کے ایک حصے اور ایک اور حصے کا بٹن دبایا تو مشین کے اس حصے میں موجود ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی. چند دھماکوں کے بعد اسکرین پر ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر نمودار ہوا جس کی دیوار کے ساتھ اوپر تلے 10 انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھی. دسوں کی دسوں بظاہر انسانی لاشیں ہی لگتی تھی لیکن ان کا انداز ایسے تھا جیسے لکڑی کے گھٹے ایک دوسرے پر چن کر رکھ دیے گئے ہوں. ڈارسن نے پہلے بٹن کے ساتھ ایک اور بٹن دبایا جو اسکرین کی سائڈ پر دھماکے سے ہونے لگے. ڈارسن نے اسکرین کی سائڈ میں جہاں ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے تھے ایک نوب کو ذرا سا گھما تو دھماکے بند ہو کر اس پر ایک نمبر واضح ہو گیا کہ ساتھ ہی اسکرین پر دیوار کے ساتھ موجود 10 انسانی لاشوں میں سب سے اوپر والی لاش کے جسم میں تیز روشنی پھوٹنے لگی اور دوسرے لمحے وہ چھٹ کر فرش پر عام انسانوں کی طرح کھڑی ہو گئی لیکن اس کے پورے جسم سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی. डॉटसन ने नॉब दोबारा घुमाई तो स्क्रीन की साइड पर दो का हिस्सा उभरा और उसके साथ ही दूसरी लाश की जिसम से रोशनी फूट पड़ी और फिर वो भी उछलकर पहले के साथ खड़ी हो गई। डॉटसन ने एक और बटन दबाया और साथ ही माइक का बटन दबा दिया। हेलो राइट मैन नंबर 1 एंड 2 आर यू अटेंडिंग चीफ डॉटसन, डॉटसन ने रेस लेजे में कहा। यस बॉस, दोनों के हलक से बारीक की आवाजें निकली। नोट माई इंस्ट्रक्शन, डॉटसन ने कहा। फिर वो उन्हें तफसीली हिदायत देने लगा कि वो देसी कबीलों में जाएं जहां मैडम ग्लोरिया मौजूद है, इन्हें मैडम ग्लोरिया को वहां से वापस ब्लू रूम में पहुंचाना है। उसके लिए चाहे पूरे कबीले को ही क्यों ना मौत के घाट उतारना पड़े, इन्हें हुक्म की हर सूरत में तामील करनी है और फिर रिपोर्ट करनी है। यस बॉस, दोनों ब्राइट मैन ने जवाब दिया और डॉटसन इन्हें हरकत में आने का हुक्म देकर मशीन के बटन ऑफ करके माइक को एक तरफ रख दिया। इसे मालूम था कि देसी कबीले के अफराद रोशनी के इंसानों से बेहद डरते हैं और वो उन्हें अजीम देवता के नाम से पुकारते हैं, इसलिए दोनों मैडम को आसानी से ले आएंगे। अब इसे सिर्फ इतना इंतजार था कि जैसे ही मैडम ब्लू रूम में पहुंचे वो चीफ बॉस से रब्ता कायम करके इसे मुकम्मल रिपोर्ट दे दे। इसके लबों पर कामयाबी की मुस्कुराहट दौड़ रही थी। इसे यकीन था कि इस सूरत हाल में चीफ बॉस लाजमन इसे आइंदा के लिए लेबोरेटरी का इंचार्ज बना देगा और फिर मैडम इसके मातहत होगी और लेबोरेटरी के कानून के मुताबिक ऑफिसर को मातहत पर हर किस्म का पूरा अख्तियार होता है, चाहे वो इसे गोली क्यों ना मार दे, इससे पूछ कुछ नहीं होती। इसलिए अगर मैडम को इसके मातहत बना दिया गया तो फिर मैडम इसकी कनीज बन जाएगी और इसके बाद वो मैडम के मूड और हुक्म का ताबा ना होगा बल्कि मैडम इसके मूड और हुक्म की ताबा होगी और जब वो चाहेगा मैडम को अपनी खापा में तल्ब कर सकेगा। ये ख्याल सोच सोच कर ही डॉटसन का दिल भी यूं चलने लगा और इसके होठों पर बेहद मानी खेत मुस्कुराहट तैर रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मशीन से दोबारा टूट टूट की आवाजें सुनाई दी और डॉटसन ने जल्दी से माइक उठाकर इसे ऑन कर दिया। टूट टूट की आवाजें आना बंद हो गई। हेलो राइट मैन नंबर 1 कॉलिंग चीफ डॉटसन, मशीन से बारीक और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। यस चीफ डॉटसन अटेंडिंग, डॉटसन ने तहमकाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, हुक्म की तामील हो चुकी है, मैडम ग्लोरिया को ब्लू रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। वो बेहोश मिली है और अभी तक बेहोश है, वो बंदी हुई है। दूसरी तरफ से बारीक आवाज सुनाई दी। पूरी तफसील बताओ कि वो देसी कबीले में कहाँ थी और वहाँ से मैडम को लाने के लिए तुम्हें क्या कार्रवाई करनी पड़ी, डॉटसन ने तहमकाने लहजे में पूछा। बॉस, हम दोनों देसी कबीले के सरदार के झोपड़े के सामने उतरे और हमने अपना मखसूस सायरन बजाया तो देसी कबीले के हर फर्द मां सरदार के इस्तकबाल के बाहर निकल आया। उन्होंने हमारे सामने सजदा किया और हमारी शान में इस्तकबाल या फिक्रे कहे। हमने मैडम के बारे में सरदार से पूछा तो हमें बताया गया कि मैडम ग्लोरिया सरदार के झोपड़े में मौजूद है और वो बेहोश और रस्सियों से बंधी हुई हैं। इनके आगाम देवता के अवतार का तर्जुमा इन्हें वहां लाया था और इसने सरदार को हुक्म दिया था कि इनसे इनकी वापसी तक वहीं रखा जाए। हमने आगाम देवता के अवतार का ये हुक्म रद्द कर दिया और मैडम को वापस ले जाने के लिए अपने हवाले का सरदार को हुक्म दिया। चुनाचा सरदार के हुक्म पर दो आदमी सरदार के झोपड़े से भी पुष्ट मैडम को उठा लाए। मैडम के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और फिर हम मैडम को इसी हालत में लिया और आपके हुक्म के मुताबिक किसी ब्लू रूम में पहुंचाकर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बारीक और चीखती हुई आवाज में जवाब दिया गया। ओके, अब तुम दोनों वापस अपने शेड में जाओ और ब्रेक हो जाओ, डॉटसन ने तेज लहजे में कहा और फिर माइक ऑफ कर दिया। से मालूम था कि वो दोनों दोबारा पहले की तरह अपने साथियों पर जाकर लेट जाएंगे और फिर एक बार फिर ऑफ हो जाएंगे जैसे पहले थे। मैडम के मुतालिक अब डॉटसन को कोई फिक्र ना थी क्योंकि ब्लू रूम की ताकत और निजाम ऐसा था कि मैडम वहां से किसी सूरत ना निकल सकेगी और फिर वो तो बंदी हुई थी इसलिए वो बेफिक्र था। डॉटसन मशीन ऑफ करके उठा, उसने दोबारा ग्लास इस पर चढ़ाया और हॉल नुमा कमरे से बाहर आकर वो इस तरह रहदारियां क्रॉस करता हुआ वापस अपने दफ्तर पहुंच गया। यहां पहुंचकर इसने लाशल की ट्रांसमीटर निकाला और चीफ बॉस को कॉल करने लगा, लेकिन चंद लम्हों बाद उसे हेडक्वार्टर से पैगाम मिला कि चीफ बॉस 48 घंटों के लिए किसी खुफिया मकाम पर गए हुए हैं और इनसे रब्ता नहीं हो सकता। जिस पर डॉटसन ने पैगाम दिया कि चीफ बॉस जैसे ही वापस आए इन्हें पैगाम दे दिया जाए कि वो ब्लैक कॉलर लेबोरेटरी में फौरी तौर पर डॉटसन को कॉल करे। इसके बाद ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने इत्मीनान का एक तरीन सांस लिया क्योंकि इसे मालूम था कि 48 घंटों के लिए वो बिल्कुल फारिग है, बाकी का चीफ बॉस की हिदायत के मुताबिक ही होना था। चुनाचा वो उठकर अपनी फातवा की तरफ बढ़ गया क्योंकि रात काफी से ज्यादा गुजर गई थी और उसकी आंखों में नींद पूरी तरह बिखर गई थी। इमरान की आंखें खुली हुई थी और जहन पूरी तरह काम कर रहा था लेकिन इसका जिस्म बिल्कुल ही बेहिसो हरकत था। यही हाल कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद और बाकी सब साथियों का था। इमरान मैडम समेत इसकी ख्वाबदुआ से निकलकर प्रोफेसर रॉकी के साथ शटल गाड़ी पर सवार होकर स्पेशल वे के दरवाजे तक पहुंचा और फिर इसने प्रोफेसर रॉकी से दरवाजे के खोलने और बंद करने का सारा सिस्टम पूछ लिया। ये सिस्टम और कोर्ट मैडम ने प्रोफेसर को बताया था ताकि प्रोफेसर इमरान को अंदर ला सके। इसके बाद दरवाजा खोलकर वो मैडम और प्रोफेसर समेत जंगल में पहुंच गया था और फिर वो सरदार के झोपड़े में पहुंचा और इमरान ने देवता अरगान के तर्जुमान की हैसियत से सरदार को हुक्म दिया कि वो मैडम की पूरी तरह हिफाजत करे और इसे इसके दूसरे हुक्म तक इस झोपड़े में कैद रखा जाए। प्रोफेसर की मिन्नत खुशामद पर इमरान ने सरदार को हुक्म दिया कि देवता अरगान के हुक्म पर प्रोफेसर को ब्लैक कॉलर से बाहर भेज देने का इंतजाम किया जाए। अलबत्त इसने सरदार के झोपड़े तक पहुंचने से कभी भी प्रोफेसर से लेबोरेटरी की अंदरूनी मालूमात जिस हद तक प्रोफेसर को मालूम थी तफसील से पूछ ली थी। इमरान के कहने के मुताबिक सरदार ने इसी वक्त एक डोंगी का बंदोबस्त किया और फिर चार अफराद साथ देकर दरिया के रास्ते प्रोफेसर को ब्लैक कॉलर से बाहर ले जाकर छोड़ जाने का हुक्म दिया। प्रोफेसर के जाने के बाद इमरान ने कर्नल फरीद के साथियों और अपने साथियों को बेदार किया और इन्हें सारी सूरत हाल बताकर इन्हें हमरा लेकर वो वापस स्पेशल ग्रे का दरवाजा खोलकर अंदर लेबोरेटरी में ले आया। इसने प्रोफेसर से प्लस स्टोर के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल कर ली थी और इनका प्रोग्राम था कि वो खुफिया तौर पर प्लस स्टोर में जाकर वहां से जरूरी इसलाह हासिल कर लेंगे और फिर लेबोरेटरी पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इमरान के ख्याल के मुताबिक लेबोरेटरी की इंचार्ज मैडम ग्लोरिया इनके कब्जे में थी और प्रोफेसर ने बताया था कि लेबोरेटरी के इंतजामी शुबे में इंसान नुमा रोबोट रखे गए हैं। असल इंसान सिर्फ दो हैं, वो खुद और मैडम। अलबत्ता तामीरी शुबों में असल इंसान काम करते हैं। इस तरह स्पेशल लेबोरेटरी जहाँ स्पेशल मिशन पर काम हो रहा है वहाँ असल साइंसदार है और इनका इंचार्ज एक असल इंसान डॉसन है। इसलिए इमरान का यही प्रोग्राम था कि इसलाह हासिल करने के बाद वो इंतजामी शुबे पर मुकम्मल कंट्रोल करके फिर तामराती शुबे के अफराद को साथ लेकर स्पेशल लेबोरेटरी पर हमला करेगा और वहां से साइंसदानों को बरामद करके इस लेबोरेटरी को तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर रॉकी की मशीन की मदद से वो साइंसदानों के दिमाग को रीबैक करके नॉर्मल हालत में ले आए और फिर इनकी वापसी होगी। आखिर में असल इंसानों को बाहर निकाल कर लेबोरेटरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। इस तरह ये मिशन मुकम्मल हो जाता है, लेकिन स्पेशल वे में दाखिले के फौरन बाद ही इन पर ना जाने किसने साइंस की हरबा इस्तेमाल किया और फिर वो बेख्याली में ना सिर्फ इसकी जद में आ गए बल्कि वो सब बेहिसो लाशों की सूरतों में कमरे में पड़े हुए थे। इसका मतलब था कि प्रोफेसर ने गलत बयानी से काम दिया था। यहाँ मैडम और प्रोफेसर के अलावा भी कोई और आदमी था जिसे शायद इनके निकल जाने के बाद सारी वारदात की खबर हो गई। वो जूनियली वेद में मजबूत अफराद इन्हें स्पेशल वे से उठाकर इस कमरे तक ले आए थे, वो भी इंसानी शक्ल में रोबोट ही थे। अब तक किसी और असल इंसान की शक्ल उन्होंने ना देखी थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो सब बुरी तरह फंस गए थे। जबान भी जिस्म के साथ ही बेहद हो चुकी थी, इसलिए वो बोलने से भी माधूर थे। इमरान जानता था कि अगर फौरी तौर पर बेहिजती का इलाज ना किया गया तो फिर इन्हें मौत के मुंह से कोई ना बचा सकेगा और इसी हालत में वो आसानी से गोलियों से छलनी हो जाएंगे, लेकिन इस बेहिजती को दूर करने का तरीका समझ में ना आ रहा था। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान का जहन घूम गया जब इसने वाजे तौर पर कर्नल फरीदी के जिस्म में हरकत होते देखी। कर्नल फरीदी के जिस्म ने आहिस्ता आहिस्ता करवट बदली और फिर इसका रुख इमरान की तरफ हो गया। इमरान हैरान था कि कर्नल फरीदी का जिस्म आखिर किस तरह हरकत में आ गया कि अचानक कर्नल फरीदी आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। इसकी हरकत की रफ्तार बेहद सुस्त थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठकर न सिर्फ बैठ गया बल्कि इसने अब खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी। इमरान तो क्या बाकी साथी भी बेहिसाब हरकत पड़े कर्नल फरीदी को देख रहे थे। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी उठकर खड़े होने में कामयाब हो गया। कैसी रही? अचानक कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनाई दी और इमरान दिल ही दिल में कर्नल फरीदी की हैरत अंगेज कामयाबी पर इसे फराज तस्कीन अदा करने लगा। कर्नल फरीदी चंद लम्हों तक ड्रिल करने के अंदाज में हाथों और पैरों को हरकत देता रहा और फिर उसका जिस्म पूरी तरह हरकत में आ गया तो इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान खामोश पड़ा से देखता रहा। कर्नल फरीदी ने झुककर इमरान के मुंह पर हाथ रखा और साथ ही दूसरे हाथ से इसकी नाक बंद कर दी और इसका सांस घुटने लगा। कर्नल फरीदी की गिरफ्त बेहद सख्त थी और चंद लम्हों बाद ही इमरान के जिस्म में हरकत बेख्तियार हरकत हुई, लेकिन कर्नल फरीदी ने हाथ न हटाए। इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका सीना फट जाएगा और फिर इसका जिस्म बुरी तरह तड़पा तो कर्नल फरीदी ने हाथ एक झटके से हटाए। अरे आप तो मुझे दिन दहाड़े हलाक कर रहे थे, इमरान की जबान हाथ हटते ही हरकत में आ गई। इसके सिवा और कोई चारा ना था, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान एक झटके से खड़ा हुआ, इसका जिस्म पूरी तरह हरकत में आ गया था। लेकिन फरीदी साहब, से जादू आपने कहाँ से सीख लिया कि आप खुद आपका जिस्म हरकत में आ गया, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए पूछा। कर्नल फरीदी हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि सब जादू तुम्हें ही आते हैं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे मैंने कब कहा, मैं जादू में तो आपको मैं अपना पीर और मुर्शीद मानता हूँ, इमरान ने कहा कर नजर की हंस पड़ा। दरअसल ये ऐसा भी निजाम का खेल है, बेहिसी पैदा करने वाले तमाम रेस और अध्याय बुनियादी तौर पर ऐसा भी मरकर जिसे हराम मगज कहते हैं को सुन कर देती है। इस तरह इंसान का जिस्म बेहिस हो जाता है, लेकिन अगर कुव्वते इरादी और कुव्वते मुतखिला को काम मिलाकर तमाम तवज्जो हराम मजक और हरकत मिलाने पर मजबूत कर दी जाए तो इसकी बाकायदा मशक हो तो फिर दिमाग हराम मगज के मरकज पर काबू पा लेता है, फिर तवज्जो की बिना पर इसे हरकत मिलाने में कामयाब हो जाता है। मैंने इसकी तवील मशकें की है, चुनाचा नतीजा तुम्हारे सामने है। और बाकी रही तुम्हारी बात, तो इतना तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर खून में शामिल होने वाली ऑक्सीजन जो सांस के जरिए अंदर जाती है को रोक दिया जाए तो खून की गर्दिश यकलक तेज हो जाती है, जिसका नतीजा ये है कि हराम मगज के मरकज पर छाई हुई बेहसी झटकने लगने से दूर हो जाती है, जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ। फैनल फरीद ने वह हाथ करते हुए कहा, वाह आपने तो जबरदस्त जादू सिखा दिया, मैं भी वापस जाकर इसकी बाकायदा मश करूंगा और आपकी मिठाई और चीज की पगड़ी मेरे जिम्मे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा कर्नल फरीदी हंस दिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपने अपने साथियों को हरकत में लाना शुरू कर दिया। कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद पर वही अमल दोहराया जो उसने इमरान के साथ किया, जबकि इमरान ने जूलिया के साथ, और फिर थोड़ी देर बाद इन सबकी बेहसी दूर हो गई और वो सब चाको चौबंद हो गए। अगर कर्नल फरीदी बेहसी दूर ना करते तो तुम्हारे जिस्म को गोलियों से छलनी हो जाता, कैप्टन हमीद ने हरकत से हाथ इमरान पर तंज शुरू कर दिया। अच्छा चलो 15 अगस्त की पगड़ी तुम्हारी भी हो गई, आखिर तुम भी कर्नल फरीदी के नाखल्फ शागिर्द हो, अगर बाखल्फ होते तो तुम भी ये मशक कर चुके होते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन हमीद बे अख्तियार जीत गया, इसे इश्क लड़ाने से फुर्सत होगी तो मशक करेगा। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क और मशक में सिर्फ आयन और नीम का फर्क है, और आयन से इमरान बनता है इसलिए इश्क हो गया मेरा काम और नीम से मौत। अब आगे कैप्टन हमीद कम अज कम इतना तो समझदार है ही। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बकवास शुरू हो गई, ख्वा मखा हमें यहाँ लाकर फंसा दिया। कैप्टन हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा, हाँ तो इमरान अब तुम बताओ कि ये क्या चक्कर हुआ, तुम तो कुछ और बता रहे थे। कर्नल फरीदे ने संचीला लहजे में पूछा, कर्नल साहब हिसाब किताब में गलती तो हो ही जाती है, जायचा गलत हो गया होगा, मैंने समझा कि मुल्क का उरूज होगा, मरीज का उरूज होगा, वो निकल आया जहल का उरूज, अब बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मेरा मतलब तुम पर तंज करना नहीं था, तुम गलत समझे हो, मेरा मकसद था कि ये सूरत हाल कैसे पलट गई। कर्नल फरीदी ने इसका तंज का मतलब समझते हुए हंसकर कहा, मुझे तो यही इतना मिली थी कि मैडम यहाँ की इंचार्ज है, लेकिन अब इस हरकत से मालूम होता है कि कोई और भी है, फिर आज फिलहाल तो कोई सामने नहीं आया और शायद वो लोग इस बात से ही मुतमईन होंगे कि हम बेहिस हो हरकत पड़े हैं, लेकिन हम कर्नल फरीदी के जादू की वजह से हरकत में आ गए तो फिर ये हरकत जारी रहनी चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी से कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ा, इसने दरवाजे का हैंडल दबाकर इसे खींचा तो दरवाजा आहिस्ता से खुल गया, इसे बाहर से बंद ना किया गया था, इमरान की आंख में चमक बढ़ गई थी। इसने बाहर जाकर तो इसे राहदारी में दो आदमी खड़े नजर आए, इनके कांधों से मशीन गने लटकी नजर आ रही थी, वो सामने दीवार की तरफ देख रहे थे। इमरान कुछ लम्हे ने बगौर देखता रहा और फिर से यकीन हो गया कि ये असल इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में रोबोट है, तो इसने झुककर अपना एक बूट उतारा और फिर दरवाजे में से हाथ निकाल कर इस बूट को जोर से इनके अलावा आगे फेंक दिया। जैसे ही बूट फर्श से टकराया दोनों रोबोट बिजली की तेजी से हरकत में आए, उन्होंने इंतहाई तेज रफ्तार से कांधों से मशीन गने उतारी और इस बूट पर बेतहाशा गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ऐसा करते वक्त इन दोनों की पुष्ट इमरान की तरफ हुई और इमरान दरवाजा खोलकर बिजली की तेजी से इन पर लपका, फिर इससे पहले के वो इंसानी रोबोट मुड़के इमरान की लाते पूरी क्वेश्चन की पुष्ट पर पड़ी और वो खुद फिजा में कलबा दिखाकर सीधा हुआ। इसकी एक लात एक रोबोट की पुष्ट के दरमियान और दूसरी लात दूसरे रोबोट की पुष्ट के दरमियान पड़ी थी और वो दोनों दर खा कर मुंह के बल फर्श पर गिरे, इनके गिरने से धमाका हुआ और वो नीचे गिरकर फिर सीधे ना हुए, अलबत्ता मशीन गन इनके हाथों में इसी तरह पकड़ी हुई थी। इमरान ने आगे बढ़कर दोनों मशीन गने इनके हाथों से निकाल दी, वो दोनों बेहिस हरकत पड़े हुए थे। मशीन गने निकाल कर वो वापस मुड़ा तो दरवाजे पर कर्नल फरीदी और उसके बाकी सब साथी खड़े थे। ये F6 टाइप के रोबोट हैं, इनकी पुश के एंड दरमियान में ऑपरेटिंग मशीन है। इमरान ने कर्नल फरीदी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैंने देख लिया है, मेरे ख्याल में यहाँ के तमाम रोबोट इसी टाइप के हैं, मैडम के कमरे में जो फाइटर थे वो 20 टाइप के थे। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा, ये राहदारी और कमरा शायद साउंड प्रूफ है, वरना इस कदर फायरिंग के बाद तो यहाँ तूफान आ जाना चाहिए था। जूलिया ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है जूलिया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, फिर वो सब राहदारी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हमें कोई और हल सोचने चाहिए, इस तरह हम कब तक एक एक रोबोट को नाकारा करते रहेंगे। کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، حل میں نے سوچ لیا ہے، کرنل خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا حل؟ عمران سمیت سب نے چوک کر اس کی طرف دیکھا، میڈم گلوریا ان کی انچارج ہے، اس لیے یہ اس کی آواز اور لہجہ نہ صرف پہچانتے ہوں گے بلکہ اس کا حکم بھی مانتے ہوں گے، اگر مس جولیا میڈم گلوریا بن جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کرنل فریدی نے کہا، لیکن تنویر کی موجودگی میں جولیا میڈم گلوریا کیسے بن سکتی ہے؟ یہ فوراً رقابت کا چکر چلا دے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ، اچھی خاصی سنجیدہ بات میں بول پڑتے ہو، لیکن کرنل صاحب میں نے تو میڈم گلوریا کا لہجہ اور بولنے کا انداز تو سنا ہی نہیں، جولیا نے عمران کو ڈانٹ کر کرنل فریدی سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ نے کیوں نہیں سنا؟ جب میں انکورا برادر سے لڑ رہا تھا تو میڈم گلوریا ساتھ کھڑی تھی، کرنل فریدی نے کہا، او تو وہ میڈم گلوریا تھی، لیکن سوری اس وقت میں نے اس کے لہجے پر غور ہی نہ کیا تھا، جولیا نے معذرت بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر تنویر وعدہ کرے کہ وہ مجھ پر عاشق نہ ہو جائے گا تو میں میڈم گلوریا کی آواز اور لہجہ بنا کر سنا دیتا ہوں، عمران پھر بول پڑا، میں تم جیسے چمخر پر کیوں عاشق ہونے لگا؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور سب اختیار ہنس پڑے، عمران سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، اس نے بھاری آواز سے دروازے کو ذرا کھینچا تو وہ کھل گیا، میڈم اسپیکنگ، باہر کون ہے؟ آواز دے کر شناخت کرائیں، عمران کی حلق سے یکلک میڈم کی آواز نکلی، نمبر 14 اور نمبر 11 آف 33 موجود ہے میڈم، باہر سے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی، جی نمبر 1 آف 33 کو فوراً بلاؤ، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، عمران نے کہا، یس میڈم، باہر کہا گیا اور پھر ایک آدمی کے قدموں کی چاک ابری اور عمران نے دروازہ بند کر دیا، کمال ہے، تمہیں تو اصل میں عورت ہونا چاہیے تھا، کیپٹن حمید نے پہلی بار مسکراتے ہوئے طنز کیا، اصل تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، باقی مرد تو ان میں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور کیپٹن حمید کھٹ کر رہ گیا، تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی، نمبر 133 دروازے کے باہر کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ پہلے سے مختلف تھا، اندر آ جاؤ لیکن اکیلے، عمران نے سب ساتھیوں کو سائڈ میں ہو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود دروازے کی سائڈ میں کھڑا ہو گیا، دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور انسانی شکل میں ایک رابرٹ اندر داخل ہوا، اس کے کندھے سے بھی مشین گن لٹکی ہوئی تھی، اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹکا، اس کے ہاتھ تیزی سے مشین گن پر پڑے ہی تھے کہ عمران کی لات اس کی پشت کے درمیان پوری قوت سے پڑی اور نمبر ورسنے جسم کی حرکت سست پڑ گئی، عمران نے اپنا پاؤں اس کی کمر پر رکھ دیا، کرنل صاحب اس کی پشت پر سے قمیض پھاڑ دیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور کرنل فریدی نے جلدی سے آگے بڑھ کر الٹے پڑے ہوئے نمبر 1 کی قمیض اس کی پشت سے پھاڑ دی، عمران نے یکلک اپنا پیر ہٹایا، نمبر 1 نے ایک بار پھر حرکت کرنی چاہی لیکن عمران پیر ہٹاتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھکا اور اس کا ہاتھ عین اس جگہ پر جم گیا جہاں پہلے اس کا پیر تھا، اس کی انگلیوں نے تیزی سے حرکت کی اور نمبر 1 کا جسم ایک بار پھر بے حصہ حرکت ہو گیا، دوسرے لمحے عمران نے جھک کر اس کے کاندھے پر اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا، باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئے، عمران نے بے حصہ حرکت نمبر 1 کو جس کی آنکھوں کی خاص چمک مدھم پڑ گئی تھی کمرے کی فرش پر الٹا لٹا دیا، اس کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اس کی پشت پر موجود ایک چھوٹی سی ڈبیا جو اس کے جسم کے ساتھ ہی ٹیبل تھی اور جس کے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹا سا چکر بنا ہوا تھا اور ساتھ باریک باریک نمبر لکھے ہوئے تھے جیسے پنکھے کے ریگولیٹر پر لکھے ہوتے ہیں، اس ریگولیٹر کو انگلی کی مدد سے گھمایا اور پھر ایک نمبر پر ایک پر کر رکھ کر اس نے ہاتھ ہٹا لیا، نمبر 1 میرے سوالوں کا جواب دو، عمران کی حلق سے میڈم کی آواز نکلی، پوچھے میڈم، نمبر 1 کے حلق سے ہلکی لیکن کھڑکڑاتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، کتنے نمبر یہاں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا، لہجہ بدستور میڈم جیسا تھا، 40 نمبر سیکشن 33 میں ہیں، نمبر 1 نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کمرے میں یہ جو بہت سے لوگ موجود ہیں انہیں کس کے حکم سے یہاں لایا گیا ہے اور کس طرح، تفصیل بتاؤ، عمران نے سوال کیا، چیف ڈاسن نے حکم دیا تھا کہ اسپیشل وے کے آخری پوائنٹ پر کچھ افراد بے حص پڑے ہیں، انہیں اٹھا کر سیکشن 33 کے زیرو روم میں پہنچا دوں اور ان لوگوں کی کڑی نگرانی کیا جائے، نمبر 1 نے جواب دیا، چیف ڈاسن کہاں موجود ہے اور تم اس کا حکم کیوں مانتے ہو؟ عمران نے پوچھا، اسپیشل لیبورٹری کے دفتر میں ہے، وہ ہم سے ٹاپ 11 پر بات کرتا ہے اور میڈم کے بعد ہم چیف ڈاسن کا حکم مانتے ہیں، نمبر 1 نے جواب دیا، کیا تمہارا سیکشن اسپیشل لیبورٹری میں جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا، نہیں ہم سیکشن سے باہر نہیں جا سکتے، نمبر 1 نے جواب دیا، تو میڈم کا حکم کیوں مانتے ہو؟ عمران نے پوچھا، میڈم ہماری چیف باس ہیں، اس کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، نمبر 1 نے جواب دیا، تو میڈم کا حکم سنو، میڈم تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم اب چیف ڈاسن کا حکم نہیں مانو گے، صرف میڈم کا حکم مانو گے، عمران کا لہجہ بے حد تہمکانہ ہو گیا، मैं सिर्फ मैडम का हुक्म मानूंगा, चीफ डॉसन का हुक्म नहीं मानूंगा। चीफ डॉसन गद्दार है, नंबर वन ने दोहराया। मैडम तुम्हें हुक्म देती है कि जीरो रूम में मौजूद सब बेरूनी अफराद हमारे दोस्त हैं, इमरान ने कहा। मैडम का हुक्म सुन लिया, जीरो रूम में मौजूद सब बेरूनी अफराद हमारे दोस्त हैं, नंबर वन ने कहा। तुम ऑन होते ही इन सबको सेविट मारोगे, तुम सिर्फ मैडम की आवाज का हुक्म मानोगे, इसकी शक्ल तुम्हारे मकती थी दिमाग से गायब हो जाएगी, इमरान ने कहा। मैं ऑन होकर इन्हें सेवेट मारूंगा और सिर्फ मैडम का हुक्म मानूंगा, इसकी शक्ल मेरे मकनती थी दिमाग से गायब हो चुकी है, नंबर वन ने दोहराया। तुम सेक्शन 30 के सब मेंबर्स को यही है काम दोगे, इमरान ने कहा और नंबर वन ने इसे दोहरा दिया। और इमरान ने मुस्कुराते हुए डबिया पर लगे हुए रेगुलेटर को उंगली से घुमाकर आखिरी नंबर पर कर दिया। नंबर पर पहुंचते ही नंबर वन के जिस्म में बिजली जैसी तड़प पैदा हुई, वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। इसने इमरान और उसके साथियों को सेवेट किया, जाओ और जाकर अपने तमाम मेंबर्स को हुक्म दो और इन्हें राहबारी में इकट्ठा करो, इमरान ने मैडम के लहजे में कहा। यस मैडम, नंबर वन ने कहा। तेजी से घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इसके कमरे से निकलते ही कर्नल फरीदी सब बेख्तियार हंस पड़े। वाह मैडम, हो तो ऐसी हो, जूलिया ने हंसते हुए कहा। इसे कहते हैं तब्दीली जंग, अगर जूलिया को यह कर्नल फरीदी कहना शुरू कर दे तो कैसी रहे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो सब एक बार फिर हंस पड़े। मेरा ख्याल है हमें किसी न किसी तरह चीफ डॉसन को काबू कर लेना चाहिए, कर्नल फरीद ने कहा। हाँ पहले सेक्शन 33 को तो पूरी तरह काबू कर लें, शुक्र है कि ये रोबोट हैं, वरना तो हर आदमी को कत्ल करना पड़ता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नंबर वन कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है नंबर वन, इमरान ने मैडम के लहजे में कहा। हुक्म के मुताबिक तमाम मेंबर्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं और वो राहदारी में मौजूद है मैडम, नंबर वन ने चौंक कर जवाब दिया। आओ, इमरान ने कहा। फिर वो सब साथियों समेत राहदारी में पहुंच गया। दो रोबोट जो कमरे से मुलाहिका राहदारी में पड़े थे, वो ऐसे ही पड़े थे और इन्हें पड़ा भी रहना चाहिए था क्योंकि अब वो नाकाबिले मुरम्मत थे। इनकी ऑपरेटिंग स्विच इमरान की लात की दर्द से टूट चुके थे। बाहर राहदारी में 38 अफराद मौजूद थे। अपने दफ्तर में चलो और सब मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटी पर जाएं, इमरान ने कहा। सब नमरोल ने तमाम मेंबर्स के सामने इमरान का हुक्म दोहरा दिया। सारे नंबरों के ताबदा हैं और फिर वो सब नंबरों के दफ्तर में पहुंच गए। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसके दरमियान में एक बड़ी मशीन मौजूद थी। चीफ डॉसन से अगर ऐसी इमरजेंसी बात करनी हो तो कैसे करते हो, इमरान ने पूछा और नमरोन ने इस मशीन की तरफ इशारा कर दिया। इमरान आगे बढ़ा और मशीन का जायजा लेने लगा। मेरे ख्याल में चीफ डॉसन को किसी तरह यहाँ बुला लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कर्नल फरीदी ने कहा। मेरे ख्याल में वो यहाँ नहीं आएंगे और हो सकता है कि वो चौक पड़े। हाँ अलबत्त एक सूरत हो सकती है, इमरान कुछ सोचते हुए कहा और फिर खड़े नंबरों की तरफ मुड़ गया। नंबर वन, इस लेबोरेटरी का चीफ बॉस कौन है, इमरान ने मैडम के लहजे में पूछा। चीफ बॉस बाहर रहता है, वो कभी कभार आता है, यहाँ मैडम और चीफ डॉसन रहते हैं, नंबर वन ने जवाब दिया। और इमरान ने सर हिलाते हुए स्टूल खींचा और मशीन के सामने बैठ गया। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी शक्ल देख ले, कर्नल फरीदी ने कहा। मुझे एहसास है इसका बंदोबस्त मैं पहले करूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों की तहकीक के बाद वो मशीन की साइड से एक लाफ्टेकी ट्रांसमीटर यूनिट निकालने में कामयाब हो गया। इसने इसका जायजा बगौर लिया और फिर इस पर मौजूद दो के हिंसे वाला बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर पर तीन बटन थे, एक पर टॉप लिखा था जबकि बाकी दो पर एक और दो नंबर लिखे हुए थे। इमरान ने अंदाजा लगाया था कि टॉप वाला बटन चीफ बॉस इसके लिए होगा और नंबर एक का बटन मैडम के लिए और नंबर टू चीफ डॉसन के लिए होगा। और वही हुआ, चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज गूंजी। यस डॉसन स्पीकिंग, बोलने वाले लहजे में हैरत थी। चीफ बॉस फ्रॉम डेस्क एंड, इमरान ने लहजे को बेहद भारी बताते करते हुए कहा। जाहिर है वो चीफ बॉस के असल लहजे में के बारे में कुछ ना जानता था, इसलिए बस इसने लहजे को भारी ही बना दिया। चीफ बॉस आप, मगर आपका लहजा कैसा है, दूसरी तरफ से डॉसन की चौकी हुई आवाज सुनाई दी। लहजे को छोड़ो, गले में खराबी हो गई है, बात करो, इमरान ने तहमकाना अंदाज में जवाब दिया। ओ अच्छा बॉस, इंतहाई हैरत अंगेज रिपोर्ट है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन हेडक्वार्टर से बताया गया कि आप 48 घंटे तक नहीं मिल सकते, डॉसन ने कहा। यू फूल, तमीज मत मान दो, बात करो क्या रिपोर्ट है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओ यस बॉस, आपके अहकाम के मुताबिक मैडम ग्लोरिया ने इमरान और उसके साथियों को देसी कबीले के हुदूद में भिकवा दिया था, लेकिन बॉस इमरान ने हैरतअंगेज तौर पर इस वहशी कबीले के अफराद को राम कर लिया, वो इनके द्योता बन बैठा। लेकिन बॉस रात को मैडम ने आपके अहकाम से गद्दारी करते हुए प्रोफेसर रॉकी को साथ बुलाकर इमरान को स्पेशल वे के जरिए अपनी ख्वाबगाह में बुला लिया, जहां इमरान ने इस पर काबू पा लिया। इत्तेफाक से मुझे इतला मिल गई तो मैंने टेली स्विच ऑन किया तो इमरान प्रोफेसर रॉकी और मैडम समेत स्पेशल वे से बाहर निकल चुके थे। अभी मैं मजीद कार्रवाई के मुतालिक सोच रहा था कि इमरान अपने सब साथियों समेत वापस स्पेशल वे में दाखिल हुआ। मैंने 02 फायर करके इन्हें बेहस कर दिया और फिर सेक्शन 53 के जरिए इन्हें 0 रूम में पहुंचा दिया और सेक्शन को इनकी कड़ी निगरानी के लिए कहा। इसके बाद मैंने 2 ब्राइट मैन देसी कबीले में भेजे और वहां से मैडम को वापस मंगवा लिया जो बेहोश थी। मैंने इसे ब्लू रूम में पहुंचा दिया। इसके बाद मैंने आपको मजीद हिदायत के लिए कॉल किया लेकिन आप ना मिल सके बॉस। मैडम ने तंजीम के उसूलों से गद्दारी की है, अगर मुझे बर वक्त पता ना चलता तो इमरान और उसके साथी यकीनन लेबोरेटरी पर कब्जा कर लेते, डॉक्टर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। तुमने वाकई फर्स्ट शिनासी से काम लिया है, लेकिन तुमसे एक हिमाकत हो गई कि इमरान और उसके साथियों को सेक्शन 33 के हवाले करके खुद इत्मीनान से बैठ गए हो। वो लोग इंतहाई खतरनाक हैं। तुम फौरन सेक्शन 33 पहुंचो और इनकी खुद निगरानी करो। मैं जल्द ही लेबोरेटरी पहुंच रहा हूं। इमरान ने तेज लहजे में पूछा, कहा, यस बॉस मैं अभी जाता हूं। दूसरी तरफ से डॉटसन ने कहा और इमरान ने बटन दबा कर रब्ता खत्म कर दिया। लो जनाब, चीफ डॉटसन साहब बजात खुद तशरीफ ला रहे हैं, इमरान ने ट्रांसमीटर एक तरफ रखते हुए कलर परिजी से कहा। ठीक है, मैं गेट के पास इसे आते ही छाप लूंगा, कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान ने मैडम के लहजे में नंबर 1 को फरीदी के साथ गेट पर जाने का हुक्म दिया और नंबर 1 कर्नल फरीदी को हमला लिए सेक्शन के बैरोनी गेट की तरफ बढ़ गया। तमाम मेंबर्स के चेहरे पर कामयाबी सी खिल उठी। जाहिर है अब चीफ डॉटसन के काबू आ जाने के बाद लेबोरेटरी इनके कदमों तले आ जानी थी। मैडम की आंख खुली तो जन्म में तो वो खामोशी से बेख्याली के अंदाज में आंखें खोली पड़ी रही। इसका सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था, जहन में धमाके हो रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका शऊर जाग उठा और शऊर की बेदारी के साथ ही इसने माहौल का जायजा लिया और फिर वो चौक पड़ी, क्योंकि जिस जगह वो पड़ी थी वो जगह अपनी ताकत के लिहाज से ब्लू रूम था। उस चन्नम ने सोचती रही कि आखिर वो यहाँ ब्लू रूम में कैसे आ गई, यहाँ से कौन लाया। जाहिर है इमरान तो इसे ब्लू रूम में लाकर ना छोड़ सकता था, फिर आखिर क्या हुआ। वो काफी देर तक सोचती रही लेकिन जब कोई बात वहां से छोड़कर समझ में ना आई तो इसने इस ख्याल को छोड़कर सबसे पहले यहाँ से निकलने के लिए सोचा। इसके हाथ इसी तरह पुष्पर और पैर बंधे हुए थे, लेकिन इस तरह वो उठकर बैठ सकती थी, चुनाचा वो उठकर बैठ गई और फिर इसने पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी। इसे ब्लू रूम के ऑपरेशन के मुतालिक पूरी तरह इल्म था कि ये मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज कंट्रोल है और अगर कंप्यूटर का सिस्टम बाहर से लॉक कर दिया गया तो फिर बाहर से इस लॉक को खोले बगैर वो किसी की भी तरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। और यही बात वो चेक करना चाहती थी कि क्या ब्लू रूम का हिफाजती सिस्टम बाहर से लॉक है या नहीं। कुछ देर की कोशिश के बाद वो अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो गई। चल नंबर तो वो अपना तवादुन संभालती रही, फिर उसने मेंढक की तरह फुदक फुदक कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पैर बंधे होने की वजह से वो कई बार फुदक कर खड़ी ना हो सकी और कूलों के बल जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और दोबारा उठकर खड़ी हुई। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो दरवाजे तक पहुंच गई और इसने अपना चेहरा आगे बढ़ाकर नाक लोहे के दरवाजे से लगा दी। दूसरे लम्हे वो एक झटके से पीछे हटी क्योंकि दरवाजे में हल्की हल्की सरसराहट मौजूद थी। इस बात की निशानी थी कि हिफाजती कंप्यूटर सिस्टम को बाहर से लॉक किया जा चुका है और अब जब तक इसे बाहर से ना खुला जाए यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। वो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर इसने दोबारा साइड की तरफ खुदकना शुरू कर दिया। अब वो सबसे पहले अपने आप को इन रस्सियों की ग्रिप से आजाद कराना चाहती थी। जरा सी देर में वो कमरे की इंतहाई शुमाली कोने में पहुंच गई। इस कोने में एक बॉक्स सा बाहर को उभरा हुआ था, ये कंप्यूटर बॉक्स का अंदरूनी हिस्सा था। कंप्यूटर का सारा निजाम बाहर था, सिर्फ बॉक्स का पिछला हिस्सा जो फौलाद का बना हुआ था कमरे के अंदरूनी हिस्से में बाहर को था। लेकिन इस बॉक्स की वजह से दो कोने बन गए थे और मैडम इस कोने को रस्सी से काटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसने अपनी पुश बॉक्स की तरफ की और दोनों हाथ मुमकिन हद तक ऊंचे करके दरमियानी रस्सी को अंदाज के साथ कोने पर रखा और इसे ऊपर नीचे करके कोने के साथ रगड़ने लगी। इसकी कलाइयों पर खराशी आई लेकिन वो होट देते अपने काम में मसरूफ रही। चलम भादी इस रस्सी की गिरफ्त कदर ढीली होती महसूस हुई, इसने अब तेजी से रगड़ना शुरू कर दिया और फिर एक झटके से रस्सी कट गई और उसके साथ रस्सी की गिरफ्त से आजाद हो गए। इसे जल्दी से हाथ आगे किए तो इसकी कलाइयां और दोनों हाथों की पुश काफी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन जख्म सिर्फ खराशों तक ही न रुकते, गहरे जख्म न आते। आजाद हाथ होते ही नायरब ने झुककर पैरों में बंधी हुई रस्सी खोल डाली और अब रस्सियों की गिरफ्त आजाद हो चुकी थी। दर्द की शिद्दत के बावजूद उसकी कामयाबी की वजह के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। रस्सियों की गिरफ्त आजाद होते ही वो दोबारा इस कंप्यूटर बॉक्स की तरफ बढ़ी। बॉक्स का जो हिस्सा कमरे में नजर आ रहा था वो मुकम्मल तौर पर बंद था और फौलादी चादर को तोड़ा ना जा सकता था। मैडम चल लम्हे गौर से बॉक्स के इस हिस्से का मुशाहिदा करती रही। इसके जहन से जज्बाती भूत मुकम्मल तौर पर उतर चुका था और अब वो मुकम्मल तौर पर मैडम ग्लोरिया बन चुकी थी। जहनी तौर पर वो इंतहाई अय्याश, शातिर और जहीन मैडम ग्लोरिया, जिसकी इन्हें सलाहियतों की वजह से चीफ बॉस ने इसे अहम तरीन लेबोरेटरी का इंचार्ज बनाया था। अब तक अगर इसने मार खाई तो सिर्फ जज्बाती होने की वजह से। वो कुछ देर बॉक्स को देखती रही। इसका जहन तेजी से किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तगोदो कर रहा था कि अचानक इसके जहन में एक धमाका सा हुआ। इसने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने का तरीका सोच लिया था, एक अनोखा तरीका। वो कुछ देर बॉक्स को देखती रही। इसका जहन तेजी से किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तगोदो कर रहा था कि अचानक इसके जहन में धमाका सा हुआ। इसने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने का तरीका सोच लिया था, एक अनोखा तरीका, ऐसा तरीका जो उसकी जहानत को जाहिर करता था। वो तेजी से झुकी और इसने अपने पैर से सैंडल नुमा जूती उतारी और फिर इसे फर्श पर मार मार कर इसकी एड़ी तोड़ डाली। अंदर एक लोहे की पट्टी मौजूद थी जिसके साथ एड़ी को लगा लिया गया था। चल लम्हे की कोशिशों के बाद वो जो थी में मौजूद इस पट्टी को निकालने में कामयाब हो गई। पट्टी खासी चौड़ी और मजबूत थी। इसके दोनों कोने कटे होने की वजह से खासे तेज थे। पट्टी हाथ में लेकर मैडम उठ खड़ी हुई और फिर इसने बॉक्स के कोने के जोड़ पर इस पट्टी का कोना रखकर इसे पूरे ऊपर से नीचे रगड़ना शुरू कर दिया। इस जगह चूंकि दो फौलादी चादरों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग जोड़ लगाया गया था, इसलिए इसे यकीन था कि वो जोड़ को पट्टी की मदद से हद तक खोल लेने में कामयाब हो जाएगी कि पट्टी अंदर जा सके। एक बार पट्टी अंदर चली गई तो फिर कंप्यूटर के हसास पुर्जों को वो इस पट्टी की मदद से आसानी से बेकार कर सकती थी। काफी देर तक दौड़ लगाने के बाद वो थोड़ा सा खला पैदा करने में कामयाब हो गई और फिर इसने पट्टी का चौथाई हिस्सा इस खला में अंदर दाखिल करके पट्टी को झटका देने शुरू कर दिया। अचानक इसके साथ इसके हाथ को इतना जोरदार झटका लगा कि वो चीख मारकर उछलकर पुश के बल फर्श पर जा गिरी। पट्टी भी निकलकर वापस एक छना से फर्श पर आ गिरी। मैडम नीचे गिरगिरा पर कराती हुई दोबारा उठी। उसने आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी हुई पट्टी दोबारा उठाई, लेकिन इससे लम्हे से ख्याल आया तो वो पट्टी हाथ में लिए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक जूती होने की वजह से वो चूंकि सही तौर पर ना चल सकती थी, इसलिए इसने दूसरी जूती भी उतार दी। दरवाजे के करीब पहुंच कर इसने हाथ दरवाजे से लगाया तो दूसरे लम्हे इसके हलक से मुसरत भरी चीख निकल गई। इसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। पट्टी ऐसी जगह जा टकराई थी जिससे कंप्यूटर का बरकी निजाम फेल हो गया था और इस वजह से इसे शॉक लगा था और बरकी निजाम फेल हो जाने की वजह से कंप्यूटर लॉक बेकार हो चुका था और अब वो दरवाजे में सरसराहट ना थी। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर इसे झटके से खींचा तो दरवाजा खुल गया। इसने हाथ में दबी हुई लोहे की पट्टी फेंकी और फिर उछल कर दरवाजे से बाहर आ गई। बाहर एक राहदारी मौजूद थी और वो तेजी से राहदारी में दौड़ती हुई एक दरवाजे पर पहुंची। ये इस सेक्शन का ऑपरेटिंग रूम था। दरवाजे को धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई और फिर दरवाजा बंद करके इसने जल्दी से दीवार के साथ नसब एक बड़ी सी मशीन का बटन दबाया तो मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और मशीन के दरमियान लगी हुई स्क्रीन पर धमाके से होने लगे। वो मुख्तलिफ बटन दबाकर एक छोटे से चक्कर को घुमाती रही और फिर स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये एक कमरे का मंजर था जिसमें कई मशीनें काम कर रही थी और सफेद कोट पहने ऑपरेटर्स मशीनों पर काम कर रहे थे। वो चंद लम्हे इन्हें गौर से देखती रही। स्पेशल लेबोरेटरी का ऑपरेटिंग सेक्शन था और यहाँ चूंकि नॉर्मल अंदाज में काम हो रहा था इसलिए इसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। स्पेशल लेबोरेटरी महफूज ने चक्कर को एक बार फिर घुमाना शुरू कर दिया और दोबारा बटन दबाना शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक जोरदार धमाका हुआ और साथ ही एक और कमरे का मंजर उभर आया और इस मंजर को देखते ही मैडम बुरी तरह उछल पड़ी क्योंकि कमरे में न सिर्फ इमरान बल्कि इसके साथ ही मौजूद थे ये। लेकिन 33 का ऑपरेटिंग रूम था, इससे जल्दी से एक स्विच दबाया तो कमरे से आने वाली आवाजें भी मशीन से निकलने लगी। नंबर वन, तुम कर्नल फरीदी के साथ आउट गेट पर जाओ और जैसे ही चीफ डॉर्सन अंदर दाखिल हो इसे काबू में करने के लिए कर्नल फरीदी की इमदाद करो। अचानक मैडम की अपनी आवाज मशीन से निकली और मैडम की आंखें हैरत से फैलती चली गई। बिल्कुल इसकी आवाज और इसका लहजा था जबकि इसने इमरान के लब हिलते देखे थे और फिर इसके दिमाग पर क्यामत टूट पड़ी जब इसने नंबर वन को बिल्कुल इसी तरह हुक्म की तामील करते हुए देखा जिस तरह वो मैडम के हुक्म की तामील करता था। तो ये चक्कर है, मैडम ने होड़ झेंचते हुए कहा। एक लम्हे के लिए उसने हाथ उठाया। वह इन लोगों को वह फैंसी हलबा इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने हाथ रोक लिया, क्योंकि एक तो कर्नल फरीदी कमरे से जा चुका था और दूसरे वो रोशन के सिलसिले में पूरे सूरत हाल मालूम करना चाहती थी, क्योंकि रोशन का किरदार से समझ में न आया था। न्यू रूम में इसको कैद करना और फिर बाहर से कंप्यूटर लॉक करने का सिस्टम सिवाय ब्राइट मैन के अलावा और किसी को मालूम ना था, और ब्राइट मैन का इस्तेमाल मैडम के अलावा सिर्फ रोशन ही जानता था। सेक्शन 33 में भी इससे वाकिफ ना थे, इसलिए साफ जाहिर था कि इसी ब्लू रूम में कैद करने वाला रोशन के अलावा कोई ना हो सकता था। वो स्क्रीन पर नजर जमाए खामोश खड़ी रही और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद उसने कर्नल फरीदी और नंबर वन को वापस कमरे में दाखिल होते देखा कि कर्नल फरीदी के कंधे पर रोशन लगा हुआ था और उसका अंदाज बताया था कि वो बेहोश है और किसी को मालूम ना था। ब्राइट मैन का इस्तेमाल मैडम के अलावा सिर्फ रोशन ही जानता था, सेक्शन 33 से वाकिफ ना था, इसलिए साफ जाहिर था कि इसे ब्लू रूम में कैद करने वाला रोशन के अलावा कोई ना हो सकता था। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए खामोश खड़ी थी और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद उसने कर्नल फरीदी और नंबर वन को वापस कमरे में दाखिल होते देखा कि कर्नल फरीदी के कंधे पर रोशन लगा हुआ है। उसका अंदाज बता रहा था कि वो बेहोश है। जैसे ही ये कमरे में दाखिल हुए ना, मैडम का हाथ तेजी से उठा और इसने नॉब को घुमाकर इसके साथ ही एक नीले रंग का बटन दबा दिया तो मशीन से गूंज की आवाज पैदा हुई और चंद लम्हों बाद ये गूंज काफी हद तक बढ़ गई और इसके साथ ही मैडम ने सुरखरंग से एक बटन को दो बार प्रेस कर दिया। इस बटन के प्रेस होते ही इमरान वाले कमरे में दो बार तेज धमाके हुए, इसके साथ ही इसने इमरान और उसके साथियों को फर्श पर ढेर होते देखा। अब बटन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 33 सब किसी तरह खामोश खड़ा था। जब मैडम को यकीन हो गया कि इमरान उसके साथ ही बेहोश हो चुके हैं तो उसने बटन ऑफ किया और फिर मशीन की साइड से लटका हुआ माइक हाथ में लेकर इस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों में से एक बटन दबा दिया। हेलो नंबर 1 ऑफ सेक्शन 33, मैडम कॉलिंग यू, मैडम ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, नंबर 1 अटेंडिंग यू। नंबर 1 के होल्ड हिलते दिखाई दिए तो उसकी मखसूस खड़खड़ाती हुई आवाज मशीन से निकल कर कमरे में गूंजी। ये बैरूनी अफराध तुम्हारे सेक्शन में कैसे पहुंचे, तफसील बताओ, मैडम ने तहमकाना लहजे में पूछा। मैडम, चीफ डॉसन का हुक्म मिला था कि बैरूनी अफराध स्पेशल वे के आखिरी पॉइंट पर बेहिस पड़े हुए हैं, इन्हें वहां से उठाकर जीरो रूम में कैद किया जाए और इनकी कड़ी निगरानी की जाए। चुनाचा हमने हुक्म की तामील की, फिर मैडम आपने हुक्म दिया कि ये बैरूनी अफराद हमारे दोस्त हैं, चुनाचा आपके हुक्म पर हम इन्हें यहाँ ले आए। चीफ डॉसन को यहाँ बुलाया गया और इनके एक आदमी ने चीफ डॉसन को बेहोश कर दिया और अब 11:33 के डबल सेक्शन में ये सब बेहोश पड़े हैं, नंबर 1 ने जवाब देते हुए कहा। जीरो रूम में ये लोग किस तरह बाहर निकले, मैडम ने पूछा। क्योंकि ये अफराद बेहिस थे इसलिए ये जीरो रूम को लॉक ना किया गया, सिर्फ राहदारी में दो नंबर निगरानी पर मौजूद थे, फिर राहदारी पॉइंट के अंदर से आपने मुझे बुलाया, उसके बाद आपके हुक्म पर इन्हें यहाँ लाया गया, नंबर 1 ने जवाब दिया। चीफ डॉसन को कैसे बुलाया गया यहाँ, मैडम ने पूछा। एक आदमी ने लाफिल की ट्रांसमीटर का नंबर 2 दबाकर डॉसन से बात की। इस आदमी का लहजा बिल्कुल चीफ बॉस की तरह था और इसी के हुक्म पर ही चीफ डॉसन यहाँ आया, नंबर 1 ने जवाब दिया। कौन सा आदमी है, इसकी तरफ इशारा करो, मैडम ने पूछा। नंबर 1 ने फर्श पर पड़े हुए इमरान की तरफ इशारा कर दिया। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि सिवाय चीफ डॉसन के बाकी सब बैरूनी अफराद को उठाकर जीरो रूम में डालकर जीरो रूम को लॉक कर दो और चीफ डॉसन को मेन ऑपरेटिंग सेक्शन के ब्लैक रूम में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर लॉक कर दो। जल्दी, मैडम ने काम देने शुरू कर दिए। यस मैडम, हुक्म की तामील होगी, नंबर 1 ने कहा। वो तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान की आंख खुली तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि उसने अपने आप को एक छोटे से कमरे में लोहे की कुर्सी पर बैठे हुए पाया। कुर्सी पर उसके जिस्म के आगे लोहे के मजबूत रॉड्स मौजूद थे जिनकी वजह से इमरान का जिस्म हरकत भी ना कर सकता था। कुर्सी के पाए फर्श पर गिरे हुए थे इसलिए वो कुर्सी को भी ना हिला सकता था। कमरे में वो अकेला था, इसका और कोई साथी वहां मौजूद ना था। सामने ही कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। कमरा इस कुर्सी के अलावा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। वो भी सोच ही रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा कि दरवाजा एक धमाके से खुला और मैडम ग्लोरिया अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे 4 लंबे तरंगे भारी जिस्मों के मालिक अफराद थे जिन्होंने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। इनके चेहरों पर भी सफेद निकाब थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। इसके हाथों में कूड़े मौजूद थे, ऐसे कूड़े जिनके साथ गार खादर तार लिपटी हुई थी और जिसके जरब गोश्त को बुरी तरह काट देती थी। मैडम ग्लोरिया को इस तरह अंदर आते देखकर इमरान ने एक तवील सांस लिया। इसका मतलब था कि मैडम ग्लोरिया ब्लू रूम की कैद से निकलकर वापस लेबोरेटरी में पहुंच गई है और शायद डॉसन समेत इन सबको बेहोश भी इसी ने किया होगा। अरे मैडम ग्लोरिया, अरे तुम जैसी हसीना इस तरह जल्लादों की तरह क्यों आ रही है, इमरान ने मैडम ग्लोरिया के अंदर आते ही बड़े आशकानंदाज से कहा। शट अप, अब मैं जज्बाती मूड से निजात हासिल कर चुकी हूँ जिसकी वजह से तुमने ये सारा खेल खेला, मैडम के लहजे ने बेपनाह खरक्टगी की। मैंने खेल खेला? अरे तुम इश्को मोहब्बत का खेल खेल रही हो, शुक्र है कोई सुन नहीं रहा वरना वो लाजमन तुम्हें मकतबे इश्क से छुट्टी करा देता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई है, तुम प्रोफेसर रॉकी की मदद से मुझे बांधकर स्पेशल रेल से बाहर निकले, प्रोफेसर को तुमने फरार करवा दिया और मुझे देसी कबीले के हवाले करके तुम अपने साथियों समेत वापस लेबोरेटरी में आए। अब ये इत्तेफाक था कि मेरे पलंग की साइड पट्टी पर एक ऐसा उभार था जिसका ताल्लुक डॉसन के साथ था और शायद मुझे उठाते वक्त तुम्हारा घुटना इस उभार से टकराया और इस तरह डॉसन से रब्ता हो गया और फिर इसने कंट्रोल संभाल लिया। तुम्हें वहाँ स्पेशल रूम देने 025 करके बेहस करके हीरो रूम पहुँचा दिया गया और डॉसन ने ब्राइट मैन भेज कर मुझे डीसी कबीले से वापस मंगवा कर ब्लू रूम में कैद कर दिया। वो खुद चूंकि लेबोरेटरी का इंचार्ज बनना चाहता था इसलिए उसने चीफ बॉस को कॉल किया, लेकिन चीफ बॉस 48 घंटों तक ना मिल सकता था। इस दौरान तुम लोग ने सेक्शन 33 के 01 पर कंट्रोल कर लिया और मेरी आवाज और लहजा बनाकर तुमने अपने साथियों को छुड़ाया और सेक्शन के ऑपरेशन रूम में पहुंचे। वहां से लास्ट की ट्रांसमीटर पर तुमने चीफ बॉस बनकर डॉसन को कॉल किया और उसे कहा कि वो तुम लोगों की निगरानी के लिए सेक्शन 33 में पहुंचे जहां तुम्हारे हाथ कर्नल फरीदी ने इसे जर्ब लगाकर बेहोश कर दिया, लेकिन मैं इस दौरान ब्लू रूम की कैद से निकल आई थी और मैं ऑपरेटिंग रूम में पहुंच गई थी, चुनाचा मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद मैंने डॉसन से सारी तफसीलात मालूम की और फिर इसे साजिश के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया, मैडम ने तेज लहजे में कहा। अच्छा किया, ख्वामख्वा रकीब बन रहा था, कहता था कि मैडम सिर्फ मेरी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, अब मैं किसी चक्कर में नहीं आ सकती, तुम्हारे साथी इस वक्त बेहोश पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाकर होश में लाई हूँ कि तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि बेहिशी के बावजूद तुम जीरो रूम से कैसे बाहर निकले और तुमने नंबर 1 पर कैसे कंट्रोल हासिल किया। अगर तुम ये बता दो तो शायद तुम्हारी सजा मैं नहीं कर दूँ, और अगर तुमने नहीं बताया तो फिर ये कूड़े से ब्रॉदर इस वक्त तक तुम्हारे जिस्म पर कूड़े बरसाते रहेंगे जब तक तुम्हारे जिस्म के छेतड़े नहीं उड़ा देते, मैडम ने सख्त और सर्द लहजे में कहा। ये कर्नल फरीदी का कारनामा था, इसने ऐसी मुश्किल कर रखी थी कि वो अपने दिमागी को अच्छे बेहिसी को दूर कर लेता है। बाकी रही नंबर 1 पर कंट्रोल की बात, तो रॉबर्ट पर कंट्रोल करना कौन सा मुश्किल है, असल मस्ता तो तुम जैसी हसीना पर कंट्रोल करना है, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। मैंने तो तुम्हें कंट्रोल का मौका दिया था लेकिन मौका तुमने खुद जाया कर दिया, मैडम ने होठ काटते हुए कहा। यही तो असल गलतफहमी हुई, भला मुझ जैसा आशिक मिजाज आदमी ऐसा मौका जाया कर सकता है जो किसी खुशनसीब को ही मिल सकता था। तुम खुद सोचो, यूं तो दुनिया में हजारों क्या लाखों करोड़ों हसीन औरतें मौजूद होंगी, लेकिन ब्लू पतरा का हुस्न क्यों सबसे नुमाया था, इसलिए कि वो उनसे सबसे ज्यादा हसीन थी, और मैं पूरे खलूस से कह रहा हूँ कि तुम ब्लू पतरा से भी ज्यादा हसीन हो। अब तुम खुद बताओ कि अगर किसी जीते जागते आदमी को ब्लू पतरा से भी ज्यादा हसीन औरत की तरफ से दावत निशात मिले तो वो कैसे इनकार कर सकता था। तुम्हारे सामने मुझ जैसा दुनियादार तो एक तरफ 16 साल राहिब भी अपनी इबादत छोड़कर चहक पड़े, इमरान के लहजे में बेपना सादत जाती थी। तुम एक बार फिर मुझे इस जज्बाती रो में धकेलना चाहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैडम ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने इसकी आंखों में बढ़ती हुई चमक देख ली थी। जाहिर है खुशकिस्मती किसी का दरवाजा बार बार तो नहीं खटखटाती, काश वो मुर्दा प्रोफेसर रॉकी हम दोनों को चक्कर ना देता, इमरान ने सर हिलाते हुए ताफुक भरे लहजे में कहा। प्रोफेसर रॉकी, क्या मतलब, इसने क्या किया, मैडम ग्लोरिया ने चौंक कर पूछा। इसकी आंखों में उलझन के तासुरात उभर आए थे। ओ हाँ, तुम्हें तो मालूम नहीं किसने क्या सब कुछ किया, मुझे भी बाद में पता चला, इसलिए मैंने प्रोफेसर रॉकी को बेहद अजियतनाक मौत मार दिया और अब तक तो इसका गोश्त देसी कबीले के मादूम में हजम भी हो चुका होगा। असल साजिश तो इस प्रोफेसर रॉकी ने की थी, वो बेहद अय्यार और साजिश आदमी था, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। साजिश, कैसी साजिश, कुछ मुझे भी तो पता चले कि इसने क्या साजिश की, मैडम ने तेज लहजे में कहा। इसने अपनी मशीन के जरिए तुम्हें चक्कर दिया था, बाहिर इसने तुम्हारी हिदायत मेरे जहन में रासिक करना जाहिर किया, लेकिन दरअसल इसने दूसरा चक्कर चला दिया और सारी मनसूबाबंदी मेरे जहन में मुंतकिल कर दी, और फिर नतीजा वही हुआ। मैंने अहकाम के मुताबिक काम किया और तुम्हें बांधकर साथ ले गया और इस तरह प्रोफेसर रॉ की लेबोरेटरी से बाहर निकल गया। जो कुछ मैंने किया उसकी हिदायत के ताबे जहनी तौर पर किया, इमरान ने सादा लहजे में कहा। तो वो प्रोफेसर रॉकनी ने दोगली चाल चली, लेकिन फिर तुमने लेबोरेटरी पर कब्जा करने की क्यों कोशिश की, मैडम ने कुछ सोचते हुए पूछा। इसने मुझे डॉसन का मुतालिक बताया था कि डॉसन तुम्हारा आशिक है। जब मैं जहनी अहकाम से निकल आया तो मुझे इस मौका का जाया होने का बेहद कल कुआ सुना था। मैंने फैसला किया कि लेबोरेटरी पर कब्जा करके डॉसन का खात्मा कर दिया जाए। इसके बाद तुम्हें देसी कबीले से वापस मंगवा कर पाबुआ में पहुंचाकर तुम्हारे आगे गुलामी का इजहार किया जाए। इस तरह शायद तुम मुझे माफ कर देती, लेकिन जब मैं डॉसन को हलाक करने लगा तो तुमने हम सबको बेहोश कर दिया, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन इस तरह तो चीफ बॉस मुझे कत्ल करा देता, वो भला तुम लोगों को लेबोरेटरी पर कब्जा कैसे बर्दाश्त कर सकता था, मैडम ने कहा। तुम भी हर हसीना की तरह भोली भाली हो, चीफ बॉस को कैसे मालूम होता कि हम लोग यहाँ हैं। मेरे साथी मजदूर बने रहते, तुम लेबोरेटरी की इंचार्ज होती और मैं तुम्हारे पास। बाकी रहा डॉसन, तो तुम चीफ बॉस को मुतमईन कर सकती थी कि डॉसन हमसे मिलके गया था, इसलिए तुमने इसे हलाक कर दिया। हमारे मुतालिक तुम्हारा चीफ बॉस लाजमन यही समझता कि हम देसी कबीले के मेदों में पहुंच चुके हैं। चुनाचा इस तरह मैं तुम हमेशा इकट्ठे रहते और किसी को हिंदी ना होता, इमरान ने जवाब दिया। स्कीम तो अच्छी थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, अब तुम सबकी हिलाकत जरूरी होती है, मैडम ने कहा। उसके साथ ही वो एक कदम पीछे हट गई। आगे बढ़ो, इसकी खाल कूड़े मार मार कर उतार दो, मैडम ने चीख कर कहा, और चारों कूड़े ब्रदर बिजली की तेजी से आगे बढ़े और इमरान के होठ बिछ गए। इन खौफनाक कूड़ों की तरबात से मौत यकीनी थी। दूसरे लम्हे फिजा में शाएं शाएं की आवाजें गूंज रही थी। हमें हर सूरत में यहाँ से निकलना है, कर्नल परीनी ने होर्ड भेजते हुए कहा। वो सब सिवाय इमरान के बड़े कमरे में मौजूद थे। सबसे पहले कर्नल परीनी को होश आया था और फिर इसने सबको होश लाया। इमरान गायब था। मेरा ख्याल है हमें बेबसी से घसटने फिरने के बजाय डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए, सफदर ने कहा। ठीक है, मैं भी अब यही चाहता हूँ, ना जाने इमरान कहाँ हूँ, बहरहाल अब हमें खुद ही कुछ करना चाहिए, कर्नल परीनी ने कहा। असल मसला तो असला बन गया है, खाली हाथों तो कुछ नहीं हो सकता, ऐन मौके पर यहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। डॉसन तो हमारी कैद में था, फिर ना जाने किसने हमें बेहोश कर दिया, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे ख्याल है हमें बातें करने के बजाय इस दरवाजे पर टूट पड़ना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, आओ फिर कोशिश करें, इस तरह बैठे रहने से मसला हल नहीं होगा, कर्नल फरीदी ने कहा। और वो सब दौड़ते हुए कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़े। कैप्टन हमीद सबसे पहले कंधा जोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन कर्नल फरीदी ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। ठहरो, मेरे ख्याल में दरवाजे में बरकी रूह मौजूद होगी, कर्नल फरीदी ने कहा, और आगे बढ़कर इसने अपनी उंगली दरवाजे से लगाई ही थी कि जोरदार झटके की वजह से वो कई कदम पीछे हटता गया। इसमें जबरदस्त करंट मौजूद है, कर्नल फरीदी ने कहा। कैप्टन हमीद तभी सबके जोशो खरोश पर कौफ पड़ गई। अभी वो सोच ही रहे थे कि इसका क्या हल किया जाए कि दरवाजे से बाहर कदमों की आवाजें उभरी और कर्नल फरीदी ने हाथ उठाकर इन्हें तेजी से साइडों में हो जाने का इशारा किया। वो दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए थे। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से खुला, फिर चार मशीन गनों से मुसल्ला अफराद उछल कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन दूसरे लम्हे इनकी चीखों से कमरा गूंज उठा। कैसेट नंबर 4 का इख्तिताम हुआ, बकिया नॉवल कैसेट नंबर 5 पर समाप्त फरमाइए।